ایک عرب عالم سے مجدد اور تجدید دین کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ مجدد کون ہے؟ مجدد کوئی پرسرار لفظ نہیں، مجدد دراصل وہ ہے جو بدلے ہوئے حالات میں اسلام کے ریلیونس کو دریافت کرے. مثلا موجودہ زمانے میں سیکولرزم اور جمہوریت کے سیاسی نظریات سامنے آئے تو تمام مسلم رہنماؤں نے اس کے خلاف منفی رد عمل کا اظہار کیا، حالانکہ تجدیدی نقطہ نظر سے کرنے کا اصل کام یہ تھا کہ وہ سیکولرزم اور جمہوریت کے مقابلے میں اسلام کی مثبت پوزیشن کو دوبارہ دریافت کریں. کراکو سے واپسی کا سفر 9 ستمبر 2009 کو شروع ہوا. واپسی کا سفر بھی دوبارہ اسی راستے سے طے ہوا جس راستے سے ہم لوگ دہلی سے کراکو گئے تھے. راستے میں ایک انگریزی اخبار میں ایک خبر پڑھنے کو ملی. یہ خبر نئی دہلی کے انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا 8 ستمبر 2009 میں بھی چھپی ہے. اس خبر کا عنوان یہ تھا، خدا کا عقیدہ انسان کے دماغ میں پیوست ہے، بلیف ان گاڈ ہارڈ وائرڈ ان آور برین. خبر میں بتایا گیا تھا کہ انگلینڈ کی برسٹل یونیورسٹی میں ایک ریسرچ ہوئی ہے جس کے نتائج ٹائمز آن لائن میں چھپے ہیں. اس ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ خدا کا عقیدہ انسان کے اندر پیدائشی طور پر موجود ہوتا ہے. ارتقاء کے دوران انسان کی اس طرح پروگرامنگ ہوئی ہے کہ وہ خدا پر عقیدہ رکھے، کیونکہ اس سے انہیں زندہ رہنے کا زیادہ بہتر موقع ملتا ہے. وی آر بورن بلیورس، ہیومن بینگس آر پروگرامڈ بائی ایولیوشن ٹو بلیو ان گاڈ بیکاز اٹ گیوز دیم اے بیٹر چانس ٹو سروائیو. پیج 17. اس بیان میں عقیدہ خدا کا فطری ہونا تو ریسرچ کا حصہ ہے، لیکن ارتقاء والی بات ریسرچ کرنے والوں کا اپنا اضافہ ہے. حقیقی مشاہدات میں اسی قسم کے مفروضات کے اضافے سے حیاتیاتی ارتقاء کا پورا نظریہ قائم کیا گیا ہے. September 2009 کو پولینڈ سے واپسی تھی. ایئرپورٹ جانے کے لیے ہمیں صبح سویرے 4 بجے ہوٹل سے نکلنا تھا. کمیونٹی کے ایک ممبر نے کہا کہ میں آپ کو اپنی کار سے ایئرپورٹ لے جاؤں گا. میں اپنے مزاج کے بنا پر متردد تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ٹھیک وقت پر ہماری قیام گاہ پر نہ پہنچ سکے، کیونکہ وہ کسی دوسری جگہ ٹھہرے ہوئے تھے. لیکن صبح کو جب ہم لوگ ہوٹل کے ریسپشن سے چیک آؤٹ کر کے ہوٹل کے گیٹ پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ مذکورہ نوجوان وہاں پیشگی طور پر اپنی گاڑی لے کر کھڑے ہوئے ہیں. خدمت کرنے والے یہ لوگ کوئی عام لوگ نہ تھے، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور اچھے عہدوں پر تعلق رکھنے والے تھے. ہوٹل سے روانہ ہو کر ہم لوگ کراکو ایئرپورٹ پر پہنچے. کراکو ایئرپورٹ نسبتاً ایک چھوٹا ایئرپورٹ ہے. ہم لوگوں نے فجر کی نماز ایئرپورٹ پر ادا کی. ایئرپورٹ کی رسمی کارروائی کے بعد ہم جہاز کی طرف بڑھے. یہاں ہمارے ساتھیوں نے کچھ مسافروں اور ایئرپورٹ کے عملے کو قرآن کا انگریزی ترجمہ اور دعوتی لٹریچر دیا. مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ہم لوگ جہاز کے اندر داخل ہوئے. یہ ایک چھوٹا جہاز تھا. کراکو سے وارسا کا یہ سفر پولش ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر 3910 کے ذریعے ہوا. सिर्फ 50 मिनट की प्रवास के बाद हम लोग वारसा एयरपोर्ट पर उतर गए। वारसा एयरपोर्ट पर हम लोग यहाँ के लॉन्ज में चले गए। वहाँ बैठने के अलावा खाने पीने का भी इंतज़ाम था। लॉन्ज के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत से लोग बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ किसी किस्म का कोई शोर न था। हर औरत और मर्द खामोशी के साथ अपना अपना काम कर रहे थे। मगरबी दुनिया में जिस तरह वर्क कल्चर है, इसी तरह यहाँ खामोशी कल्चर है। ये लोग या तो चुप रहते हैं या वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं ताकि आसपास के लोग डिस्टर्ब न हों। यहाँ भी हमारे साथियों ने लॉन्ज में बैठे हुए मुख्तलिफ लोगों को कुरान का अंग्रेजी तर्जुमा दिया। वारसा के लॉन्ज में तकरीबन 2 घंटे इंतजार करने के बाद हम लोग दोपहर के वक्त अगले जहाज पर सवार हुए। ये जहाज वारसा से ज्यूरिक जाने वाला था। वारसा से ज्यूरिक का जहाज किसी वजह से 1/2 घंटा लेट हो गया। ये हमारे लिए एक संगीन मसला था क्योंकि ज्यूरिक एयरपोर्ट पर अगले जहाज का वक्त इस तरह था कि जब ये जहाज वहां पहुंचेगा तो उस वक्त वो जहाज ज्यूरिक से दिल्ली के लिए रवाना हो चुका होगा। लेकिन इस मौके पर हम लोगों के साथ खुदा की खुसूसी मदद हुई। ज्यूरिक पहुंचने पर मालूम हुआ कि ज्यूरिक से दिल्ली जाने वाला जहाज 1/2 घंटा लेट था। इस ताखीर की बिना पर हम लोगों को ज्यूरिक एयरपोर्ट पर मजीद रुकना नहीं पड़ा और आसानी से अगला जहाज मिल गया। ज्यूरिक एयरपोर्ट पर जब हमको ये बात बताई गई तो हमारे साथियों ने अल्लाह ताला से खुसूसी शुक्र अदा किया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि दिल्ली से चलते हुए मैंने दिल्ली से दिल्ली तक फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली की जो दुआ की थी वो अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई और इसी का ये करिश्मा है कि हमें ज्यूरिक में अगला जहाज आसानी के साथ मिल गया। ज्यूरिक एयरपोर्ट की एक काबिले जिक्र बात यह है कि यहां हमें एयरपोर्ट की लंबी दूरी तय करके फौरन जहाज तक पहुंचना था। इसके लिए मुझे यहां एक खसूसी व्हील चेयर फराहम की गई। शुरू में हमारी व्हीलचेयर एयरपोर्ट की एक खातून चला रही थी। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चला रही थी जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान था और अंदर ही अंदर दुआ कर रहा था। इतने में एयरपोर्ट के अमले का एक मर्द आ गया और तेजी से व्हीलचेयर को दौड़ाते हुए जहाज के दरवाजे तक पहुंचा दिया। हमारे साथियों ने यहां भी एयरपोर्ट के अमले के लोगों को दावती लिटरेचर दिया। ज्यूरिक से दिल्ली का यह सफर 8 घंटे का था। इस दौरान स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस का फ्लाइट मैगजीन देखने को मिला। यह मैगजीन 2 जबानों में था, स्विस और इंग्लिश। 96 सफ़े के इस मैगजीन में सिर्फ 3 मौजूआत शामिल थे, फैशन, बिजनेस, ट्रैवल। इसके 2 सफ़े में खरीदारी के लिए औरतों का चॉइस और मर्दों का चॉइस अलग अलग बताया गया था। मर्दों का चॉइस, मेंस चॉइस, खास तौर पर 3 चीजें थी, मोटरबाइक, बाइसिकल, सेलफोन। इसके बरक्स औरतों का चॉइस ये बताया गया था, व्हाइट गोल्ड नेकलेस, व्हाइट गोल्ड रिंग, रोज गोल्ड वॉच। कुरान में औरतों के बारे में आया है, अवमई युनशउ फिल हिलिया, सूरत ज़ुख़रुफ़ आयत 18। यानी औरत आराइश में परवरिश पाती है। फ्लाइट मैगजीन के मस्कुरा सफ़े को देखकर मैंने सोचा कि कदीम औरत की जो नफ्सियात थी वही जदीद औरत की भी नफ्सियात है। वारसा के लॉन्ज में कुछ अखबारात मुताले के लिए मौजूद थे। उनमें से एक लंदन का अखबार टाइम्स था। ये अखबार 90 सफाहत पर मुश्तमिल था। अखबार के सफा 15 की एक सुर्खी ये थी, मस्जिद पर इस्लाम मुखालिफ मजाहरे की सूरत में तशद्दुद का अंदेशा। वायलेंस फियर्स एज एंटी इस्लाम प्रोटेस्ट टारगेट्स मास्क। खबर में बताया गया था कि कुछ शिद्दत पसंद अनासिर 11 सितंबर 2001 के वाक़े को लेकर लंदन की सेंट्रल मस्जिद हैरो सेंट्रल मॉस्क पर मुजाहरा करने का मंसूबा बना रहे हैं। इस बिना पर यह अंदेशा किया जा रहा है कि ऐसे मौके पर मुजाहरीन और मुसलमानों के दरमियान तसादुम हो सकता है, मगर यह एक बेबुनियाद बात है। इस किस्म के मुजाहरे का सही जवाब यह है कि इसका जवाब ही न दिया जाए। ऐसे मौके पर यह दरअसल जवाबी रद्द अमल है जो मसला पैदा करता है, न कि खुद अमल। यही वो हिकमत है जिसको हजरत उमर फारूक ने इन अल्फाज में बयान किया था, उमीतु अल बातिल बिस्सुम्त अन, बातिल का खात्मा करो इसके मामले में चुप रहकर। अखबार के सफा 32 पर कुछ अकवाल नकल किए गए थे। उनमें एक कौल ये था, अपने बच्चों को दयानत की तालीम देने से पहले हमें दुनिया को दयानतदार बनाना होगा। We must make the world honest before we can honestly say to our children that honesty is the best policy. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। बर्नार्ड शॉ का यह कौल एक दिलचस्प कौल हो सकता है, लेकिन हकीकत के एतबार से वो एक गैर अमली बात है। दुनिया के तमाम लोगों को दयानतदार बनाना एक गैर अमली मनसूबा बनाना है। इस किस्म का आइडियल समाज इस दुनिया में कभी नहीं बन सकता, लेकिन अफराद के लिए यह मुमकिन है कि वो अपने आप को बकदर इम्कान दयानतदार बनाएं। दूसरी बात यह कि दयानतदारी सिर्फ अमली बर्ताव का नाम नहीं है। दयानतदारी सबसे पहले दयानतदाराना सोच, ऑनेस्ट थिंकिंग का नाम है, और किसी फर्द के लिए दयानतदाराना सोच हमेशा और हर हाल में काबिल अमल होती है। जहाज के अंदर जब मुसाफिरों के लिए खाना आया तो मैंने देखा कि इसके पैकेट के ऊपर ये अल्फाज दर्ज थे, खाने का लुत्फ उठाइए, एंजॉय योर मील। ये बात खाने के पैकेट पर 5 जबानों में लिखी हुई थी। ये जदीद मादी कल्चर का एक नमूना है। जिंदगी का मादी नुक्ते नजर यानी मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ पूरा का पूरा तफरीह यानी एंटरटेनमेंट के उसूल पर मबनी है। इसके मुकाबले में मोमिनाना नुक्ता नजरिया है कि हर चीज में खुदा की रहमत को देखा जाए, खाने को अल्हम्दुलिल्लाह कहकर खाया जाए, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ लिसानी तलफ्फुज नहीं है बल्कि वो शुक्र से मामूर कल्ब का एक गहरा इजहार है। 9 सितंबर 2009 की रात को 12 बजे हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे। एयरपोर्ट की तरफ से मुझको व्हीलचेयर मुहैया की गई। मैं इस व्हीलचेयर पर बैठकर चला, मगर थोड़ी देर में मुझे सख्त इनकबाद होने लगा। यह व्हीलचेयर एक इंडियन आदमी चला रहा था। वो इतने सुस्त अंदाज में व्हीलचेयर चला रहा था जिसको अवामी जबान में मारे बांधे तरीके पर चलाना कहा जाता है, जबकि इससे पहले वारसा और ज्यूरिख एयरपोर्ट पर यूरोपियन आदमी पूरे जोश खरोश के साथ व्हीलचेयर चला रहा था। मुझे ये बात सख्त नागवार हुई और मैं पांव से चलकर एयरपोर्ट के बाहर आया। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद मेरे साथी ने मिस्टर अशोक ड्राइवर को टेलीफोन किया। उन्होंने बताया कि मैं एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हूं। ये करिश्मा मोबाइल टेलीफोन का था। मोबाइल के दौर से पहले मुसाफिर को यह मालूम नहीं होता था कि इसकी कार या उसको रिसीव करने वाले लोग एयरपोर्ट पर आए हुए हैं या नहीं। अब मोबाइल की बिना पर यह मुमकिन हो गया है कि हवाई जहाज के लैंड करते ही ये मालूम कर लिया जाए। ये अल्लाह ताला की अजीब नेमत है। इस नेमत को बेशुमार लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर भी और एयरपोर्ट पर भी, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा जो इस अजीम नेमत पर शुक्र खुदावंदी के जज्बे से सरशार हो रहा हो। जब मैं दिल्ली से सफर करके पोलैंड गया था तो वहां भी एयरपोर्ट पर मुझको रिसीव करने वाले लोग मौजूद थे। जब मैं वहां से दिल्ली आया तो यहां के एयरपोर्ट पर भी ऐसा ही हुआ। मैंने दुआ की कि खुदाया, इसी तरह मेरी जिंदगी का जहाज एक दिन आखिरत के एयरपोर्ट पर उतरने वाला है। तू अपने फरिश्तों को हुक्म दे दे कि वो वहां मेरी मदद के लिए मौजूद हों और मुझे अपने साथ लेकर उस कयामगाह तक पहुंचा दें जिसके बारे में कुरान में बताया गया है कि जहां ना खौफ होगा और ना हिज्न। यह सफरनामा मौलाना मोहम्मद ज़कवान नदवी के तआवुन से तैयार किया गया।